ओम शांति। इस संसार में तीन शक्ति सदा ही शाश्वत है, अविनाशी है। एकात्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति और समय की शक्ति, कि जो सदा ही इस संसार में अजर अमर अविनाशी है। हाँ, परिवर्तन अवश्य आता रहता है समय प्रति समय, परंतु इसका विनाश कभी नहीं हो पाता। इसलिए गीता में भी ये कहा हुआ है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे उसी स्वरूप में मुझे पहचानना। आत्मा भी जो है, जैसी है, वैसे उसको जानना पहचानना है। और इसी प्रकार समय भी जो है, जैसा है, वैसे उसको जानना समझना। तो उसमें सदा ही मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है, परंतु जब हम उसके सत्य स्वरूप को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब कई प्रकार के भ्रम में आ जाते हैं। और उन भ्रमों में आने से ही अनेक प्रकार के असत्य स्वरूप धारण कर लेते हैं और उसमें आकर के अपने अभिनय करने लगते हैं। तो वैसे जानना अर्थात क्या, सत्यता की शक्ति क्या है? सत्य अर्थात जो सदा है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी है। सत्य कभी तर्कों से प्राप्त नहीं हो सकता, सत्य कभी पुस्तक से प्राप्त नहीं हो सकता, सत्य अनुभव से प्राप्त होता है। और सत्यता का स्रोत है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को कहा गया है, क्योंकि वो सत्य है, सदा है, सत सुंदर भी है और अति कल्याणकारी है। इसीलिए ये कहा गया है, सत्यता में शक्ति है, सत्यता में शुद्धि है। कहां पर भी कोई भी बात में अशुद्धि आती है तो कहा जाता है कि इसमें असत्यता मिक्स है। तो इसलिए सत्य की परख वही है कि जिसमें शक्ति है, जिसमें भय नहीं है और जिसमें शुद्धि है, जो पवित्र है, जो साफ है, जो सदा ही स्वच्छ है। यही सत्यता की शक्ति की महानता गाई हुई है। जब तक वो सत्यता की शक्ति हमें जीवन में प्राप्त नहीं है, तब तक हम महानता के पुजारी ही रहे हैं, महान आत्माओं के, दिव्य आत्माओं की पूजा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वह सत्य स्वरूप में स्थित थे। और आज वही सत्यता की कमी हमें अपने जीवन में महसूस हो रही है। वो सत्यता कैसे छूट गई हमारे जीवन से? सत्यता अति श्रेष्ठ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, आज ये शक्तिशाली शस्त्र को हम क्यों नहीं अपना सके? क्योंकि मनुष्य जीवन में कमजोरी आ गई। और ये कमजोरी भी क्यों आई? क्योंकि शक्ति का प्रयोग करना नहीं आया, शक्ति को अपनाना नहीं आया। जिस प्रकार कहीं यात्रा में कोई व्यक्ति जा रहा हो और यात्रा में जाते वक्त अगर उसके पास कंपास जैसा साधन होते हुए भी उसको प्रयोग करना नहीं आ रहे और उस कंपास को वो फेंक दे समुद्र में कि हवाई जहाज से कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है इसलिए उसको फेंक दो, तो उसको दिशा निर्देश करने वाला कौन? और वहां से वो भटक जाता है। इसी प्रकार आज मनुष्य जीवन में भी हम आत्माएं भटक क्यों गए? क्योंकि ये इतना पावरफुल दिशा निर्देश करने वाला शक्तिशाली शस्त्र को हमने छोड़ दिया, फेंक दिया कि पता नहीं ये काम नहीं करता है। और आज इसलिए दुनिया में यही आवाज सुनाई देता है कि सत्यता के आधार पर जीना बहुत कठिन है, सत्यता की शक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको मार खानी पड़ती है, उसको गिरना पड़ता है, अनेक प्रकार के बातें हम सुनते रहते हैं। परंतु सदा के सत्य स्वरूप की बात को अगर समझ ले कि कौन सी सत्य बात को हमें जाननी है जिसके माध्यम से सत्यता की शक्ति को अपनाना सहज हो जाता है। आत्मा के विषय में सत्य जानना अर्थात कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। जैसे शरीर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां है कर्म करने के लिए, इसी प्रकार आत्मा का सत्य स्वरूप है कि जिसके पास तीन शक्तियां सदा निहित रूप में है, मन, बुद्धि और संस्कार। और जब हम मन की शक्ति को जान लेते हैं, बुद्धि की शक्ति को जान लेते हैं, संस्कार क्या चीज है उसको जान लेते हैं, तब हम अपने मन के संकल्पों को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। अर्थात हम अपने मन की शक्ति को यथार्थ रीति यूज कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं और तब हमें उसका सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति क्या है और वो बौद्धिक शक्ति को किस रूप से हमें यूज करना है, किस रीति से उसका सदुपयोग करना है। आज इतनी पावरफुल शक्ति मनुष्य के पास होते हुए भी वो कमजोर क्यों हो गया है, क्योंकि उसकी वास्तविकता को उसने समझा नहीं कि मन की शक्ति अर्थात संकल्पों की शक्ति, विचारों की शक्ति, और वो विचारों की शक्ति को किस प्रकार कौन सी दिशा में यथार्थ उसको लगाना है कि जिसके माध्यम से उसको निरंतर वो शक्ति प्राप्त होती रहे। आज वो शक्ति क्यों क्षीण होती गई, क्योंकि हमने उसको गलत दिशा दे दी। जब नकारात्मक दिशा उसको मिल गई, व्यर्थ दिशा में लग गया, तो जीवन भी हमारा धीरे धीरे व्यर्थ के रूप में होता चला गया, व्यर्थ के खाते में हमारे कर्म भी होते चले गए। तो इसलिए मनुष्य की शक्ति, आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगी और इसलिए ये सत्यता की शक्ति को उसने वहां से छोड़ना आरंभ कर दिया। दूसरी बात, जब कहा जाता है कि परमात्मा जो है जैसा है वैसा उसको जानना समझना, अर्थात उसी स्वरूप में उसको याद करना, उसी स्वरूप में उसको जानना और उसको उसके साथ वो संबंध जोड़ना। तो परमात्मा जो है जैसा है वैसे उसको जानने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से उससे सर्व शक्तियां प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्यता का स्रोत है और स्रोत से ही शक्ति प्राप्त हो सकती है। बिना स्रोत से संबंध जुड़े शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है और इसीलिए मनुष्य भटकते रहे। जिस प्रकार व्यक्ति का किसी से संबंध न हो तो वह भटकता रहता है कि सहारा कहीं से मिल जाए, कहीं आधार मिल जाए, कहीं से कुछ प्राप्ति हो जाए, तो इस प्राप्ति के उसमें ढूंढता फिरता रहता है, भटकता रहता है। तो आज मनुष्य भी ये भटकने जैसी हालत क्यों हो गई, क्योंकि सत्य से उसका संबंध नहीं रहा, सत्य को जाना नहीं, अपने सत्य स्वरूप को जाना नहीं और सत्य से उसका संबंध नहीं रहा। और तीसरा सत्य है कि समय का सत्य, समय का सत्य ज्ञान प्राप्त होना कि समय का चक्र किस प्रकार चलता रहता है। ये संसार का चक्र कहा ही जाता है कि समय के चक्र के अधीन है, काल चक्र के आधार पर चलता रहता है। लेकिन ये काल चक्र कैसे चलता है उसको कभी हमने न जाना न पहचाना और इसीलिए काल के अधीन हो गए। काल ने इस प्रकार हमारे ऊपर अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया कि जब चाहे वो व्यक्ति को उसी रूप से चलाने लगा है और इसीलिए समय का सदुपयोग भी हम नहीं कर पाए। नहीं तो ये शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के लिए कहा गया है कि समय चाहे तो व्यक्ति को इतना ऊंचा उठा सकता है और इतना आगे बढ़ा सकता है कि जिसके माध्यम से कुछ भी प्राप्त करना उसके लिए सहज हो सकता है। परंतु ये समय की शक्ति को जब हम पहचानते नहीं है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो समय व्यर्थ जाता है, और जिसने समय को व्यर्थ किया है उसके लिए कहा जाता है कि इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट योर लाइफ, या इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। अर्थात अगर हम समय को नष्ट करते हैं तो समय हमें एक न एक दिन नष्ट अवश्य कर देगा। तो इसलिए समय की शक्ति को जानना और उसका सदुपयोग करना ये अति आवश्यक है। समय की शक्ति को जानना अर्थात क्या, तो ये समय के लिए गीता में बहुत सुंदर कहा गया है कि जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा है। जब इस रहस्य को हम समझ लेते हैं कि इसमें अच्छाई क्या है और कैसे अच्छाई है, तब हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आज अधिकतर हमारा समय किसमें नष्ट होता है, जो घटनाएं हो चुकी होती है उन घटनाओं को बार बार याद करके हम समय को नष्ट करते रहते हैं कि ऐसा नहीं करते थे, ऐसा करते थे तो ज्यादा अच्छा होता था, इस प्रकार किया होता था तो और अधिक अच्छा होता था। इस प्रकार कई पूर्व घटनाओं को याद करते हुए हम उसमें ही अपने अधिकतर समय, श्वास, संकल्प की शक्ति को नष्ट करते रहते हैं, और इसीलिए जो वर्तमान समय हमें करना चाहिए वही नहीं कर पाते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि लेकिन जो हो गया उसके लिए कैसे हम ये कहें कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि अच्छा नहीं हुआ। हाँ, मान लिया कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी आप क्या कर सकेंगे, अभी समय को नष्ट करने से क्या फायदा, क्या वो जो अच्छा नहीं हुआ वो ठीक हो जाएगा। और शाश्वत बात तो ये है कि जो हुआ है उसमें भी बाह्य स्वरूप से हम देख रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसके भीतर में कोई ना कोई रहस्य अवश्य समाया होता है जो समय पर स्पष्ट होता है। जब तक समय नहीं आता है तब तक स्पष्ट नहीं हो पाता है, और इसलिए वो बाह्य स्वरूप को देखते हुए हम ये कहते हैं कि ये जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और यही बार बार सोच करके इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर हमें सत्यता की शक्ति को अपनाना कठिन होता है। और अगर उस समय किसी ने ये ज्ञान दे भी दिया कि नहीं चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, तभी भी हमें वो चीज बहुत कड़वी लगती है, वो सत्य इतना कड़वा लगता है कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सत्य बहुत कड़वा है, सत्य को हजम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्य कड़वा नहीं है, हम ये कहेंगे कि सत्य का प्रयोग जो होता है वो सही ढंग से नहीं होता, तब वो कड़वा महसूस होता है, लेकिन उस कड़वा में भी मीठापन पीछे अनुभव होता है, जो बाद में हम कई बार कहते हैं कि अच्छा हुआ ये हुआ, तो अगर ये नहीं होता था तो ऐसा होना ही असंभव होता था। तो कहने का भाव कि जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसको जब हम समझ नहीं पाते उस वक्त हम बाह्य स्वरूप को ही देख करके ये अपना ओपिनियन दे देते हैं, मंतव्य दे देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी नहीं हुई, और ये कभी भी इसको अच्छी कह नहीं सकते हैं। लेकिन परमात्मा यही समय का सत्य ज्ञान हमें स्पष्ट समझाते हैं कि इस रहस्य को सदा बुद्धि में रखेंगे तो वर्तमान भी हम नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान के समय का भी हम सदुपयोग करेंगे कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपनी वो सावधानी रखनी चाहिए कि जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते ही जाए। लेकिन जब पिछली बातों को हम भुला नहीं सकते हैं तब वर्तमान को भी हम श्रेष्ठ बना नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा से हर आत्मा को दो शक्ति अवश्य प्राप्त है, और वो शक्ति का सही समय पर सदुपयोग करना। एक शक्ति है भूलने की शक्ति और एक शक्ति है याद करने की शक्ति। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इन शक्तियों का प्रयोग गलत कर लेते हैं। जो चीज हमें याद रखनी है उसको हम भूल जाते हैं, और जो चीज हमें भूलनी होती है उसको हम भुला नहीं पाते हैं, उसको बार बार याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो सत्य तो यही है कि जो चीज हमें भुलानी है उसको हम भुला दे, और भुलाने का तरीका यही एक सहज विधि के माध्यम से है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, उसमें कोई ना कोई रहस्य समाया होगा जो हम नहीं जान सकते हैं, परमात्मा कल्याणकारी है वही जान सकता है। उसकी कोई रचना में अकल्याण हो नहीं सकता है, लेकिन उस समय ये भुलाना जो हमारे लिए कठिन होता है और ये सत्यता को स्वीकार करना जो कठिन होता है, उसके कारण हम अपना वर्तमान और भविष्य भी खत्म कर देते हैं, उसको भी उज्जवल नहीं बना पाते हैं। तो सत्य तो यही है कि भले वो कितना भी कड़वा लगता हो, लेकिन उस वक्त उस रहस्य को स्पष्ट बुद्धि में या समय के सत्य ज्ञान को स्पष्ट रीति से बुद्धि में रखने से वो कड़वापन को भी हम हजम कर सकते हैं और तब हमें मीठे फल की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। दूसरा, सत्य में हमेशा शक्ति होती है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। असत्य जो होता है उसमें डर अवश्य समाया होता है और इसीलिए वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के तर्क अपनाते रहते हैं, लेकिन तर्क से कभी सत्य सिद्ध नहीं हुआ है। हमेशा नम्रता में ही महानता गई हुई है और इसीलिए उसी से ही सत्य सिद्ध हो जाता है। भले उस वक्त तो कहने में आ जाता है कि फलाना व्यक्ति जरूर झूठ है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, या इसलिए वो चुप है, इसीलिए वो शांत है। ये कई प्रकार की गलत फहमियां मनुष्य के अंदर आ जाती है, परंतु सत्य तो वही है कि उसमें शक्ति है, इसीलिए वो सहन कर पा रहा है, इसीलिए वो शांत है और समय का इंतजार कर रहा है कि समय आने पर सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सत्य सूर्य के समान है, वो सत्य को कभी कोई छिपा नहीं सका है। भले कुछ समय के लिए बादल जरूर आ जाते हैं उसके सामने, लेकिन वो बादलों से कभी सूर्य छिप नहीं सकता है। और सूर्य को स्पष्ट करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोई और तर्क की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं में स्पष्ट है। तो इसी प्रकार सत्य स्वयं में स्पष्ट है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सहन शक्ति भी है, उसमें निर्माणता भी है और निर्भयता भी है। वो परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, वो छोटी बातों से घबराता नहीं है और वो सत्य को इस प्रकार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति की महानता स्पष्ट हो जाती है। और समय कभी उसको खत्म नहीं कर सकता है, समय उसका हमेशा विजयी बना करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिसने सत्य को अपनाया है उसको समय भी साथ देता है। उस समय भले बाह्य स्वरूप से हमें लगता है कि हाँ ये बहुत मुश्किल हो गया, देखो ये हार गया ना, हमने तो कहा था ऐसा ही होगा, सत्य को अपनाने कारण ही ऐसा हुआ है, लेकिन वो हार में भी उसकी जीत समाई हुई होती है, उस हार में भी वो विजयी बनकर के उभर आता है और वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है कि सत्यता की शक्ति के आधार पर कितना वो ऊंच और महान बन गया है। आज दुनिया में जो भी महान आत्माएं हो गए, वो असत्य स्वरूप से कभी डरे नहीं है। भले मनुष्य ने उनके सामने कितने भी इल्जाम लगाए हो, कितने भी उनके ऊपर अत्याचार गुजारे हो, लेकिन उससे न कभी वो डरा है, न कभी वो हारा है, और समय ने हमेशा उसको इस प्रकार स्पष्ट करके दुनिया के सामने रख दिया कि दुनिया को आखिर भी उनके सामने अपने शीश झुकाने ही पड़े हैं। तो यही उसकी सबसे बड़ी विजयी है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो संसार में सदा के लिए अमर हो जाता है, क्योंकि सत्य अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, कोई उसको न खत्म कर सका है न उसको कर सकता है। और इसीलिए ऐसे महान आत्माएं आज भी अनेक आत्माओं के लिए आदर्श बनकर के ही रहे हैं, और जिन्होंने सत्य को उसी स्वरूप से जाना है, पहचाना है, अपनाया है, उनके लिए दुनिया भी बाद में उसका नामाचार करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके सामने उसकी पूजा करने के लिए जैसे तुले हुए रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है के सत्य को प्रयोग करने की एक विधि आनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति के पास जाकर के एक व्यक्ति ने पूछा कि हे व्यक्ति, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधा है क्या? और व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं अंधा हूं। तो उस समय उतना गुस्से में आकर के उसने पूछा कि ए अंधा, तेरी आंखें कैसी चली गई? तो उस अंधे को भी उस समय इतना बुरा लगा कि भले मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, लेकिन ये कोई पूछने का ढंग थोड़ी है। और उसने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हें क्या पड़ी है और क्या जानने की जरूरत है कि मैं अंधा कैसे हो गया। ऐसे करके उसने न जवाब दिया और उसको भेज दिया। उसी समय दूसरा एक व्यक्ति वहां आकर के उसको पूछने लगा कि हे सुरदास जी, आपकी आंखें कैसे चली गई? आप कृपा करके हमें बताएंगे कि आपकी आंखें कैसे चली गई? उस अंधे व्यक्ति को इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी आंखें चली गई थी और किस प्रकार वो देखने वाला एक इंसान था, लेकिन कैसे उसकी आंखें, किस घटना में आकर के उसकी आंखें चली गई, सारा वृत्तांत सुनाया। दोनों ने सत्य बोला। पहले व्यक्ति ने भी सत्य बोला, वो अंधा था इसलिए उसको अंधा कहा और अंधा कहकर के संबोधित करके उसको पूछा कि हे अंधा, तेरी आंख कैसे चली गई? लेकिन वो सत्य कड़वा लगा, वो सत्य का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं हुआ था और इसीलिए वो व्यक्ति को गाली सुननी पड़ी या उसका वृत्तांत सुनने को नहीं मिला कि कैसे वो अंधा हो गया था। जबकि दूसरा व्यक्ति निर्माण था और उसने भी सत्य ही कहा, हे सुरदास जी, आपकी आंखें कैसे चली गई? आप कृपा करके मुझे बताने की कोशिश करेंगे? तो दोनों ही व्यक्ति ने सत्य बोला। एक ने अंधा कहा, वो भी सत्य था, एक ने सुरदास कहा, वो भी सत्य था, लेकिन सही प्रमाण क्या था, सत्य को प्रयोग करने की विधि कौन सी थी? कि जब निर्माणता के माध्यम से सत्य का प्रयोग किया जाता है तो वहां वो सबके दिलों को जीत लेता है, उसी के आधार पर वो सारी बातों को भी अपने जीवन में हासिल करता है और उसी के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो सत्य तुच्छता के माध्यम से प्रयोग करते हैं, वो कभी भी कोई भी बात को जानने के लिए योग्य पात्र नहीं बन सकता है। और वहां भले वो सत्य बोलता है, लेकिन सत्य बोलते हुए भी वो बहुत ठोकरें खाता है। तो सत्य का प्रयोग निर्माणता के माध्यम से जब होता है तो वो महान बन जाता है। सत्यता का प्रयोग जब तुच्छ भाषा में किया जाता है तब वो ठोकरें ही खाता है और कुछ नहीं खाता है। इसलिए सत्य का प्रयोग करना, किस विधि से प्रयोग करना, किन किन शब्दों से उसका प्रयोग करना, ये अति आवश्यक है। और ये विधि अगर मनुष्य सीख ले तो वही सत्यता की शक्ति को अपनाकर जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकता है और जितना ही ऊंचाई को प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ओम शांति।